पृष्ठ संख्या 197। डॉक्टर नज़ीर अहमद 1836 से 1912 ईस्वी बिजनौर में पैदा हुए। अरबी फारसी की प्रारंभिक शिक्षा वहीं प्राप्त की, फिर दिल्ली आए। वहाँ बड़ी गरीबी के साथ एक मस्जिद की पाठशाला में शिक्षा प्राप्त करने लगे। सहसा एक दिन दिल्ली कॉलेज की ओर जा निकले। विद्यार्थियों के प्रवेश का दिन था, वह भी भीड़ में सम्मिलित हो गए और किसी प्रकार प्रिंसिपल के पास पहुंच गए। अंग्रेज प्रिंसिपल ने इनसे अरबी भाषा और साहित्य के बारे में कुछ बातें पूछी और इनकी जानकारी से प्रभावित होकर अपने कॉलेज में दाखिल कर दिया। नज़ीर अहमद ने स्वयं लिखा है कि मैंने सच्ची विद्या, सहनशीलता, विचार और स्वतंत्रता और राजभक्ति उसी कॉलेज में सीखी। 8 वर्ष बाद कॉलेज छोड़ा और इधर उधर नौकरी करने लगे। गदर के बाद डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल हो गए। अपने उत्साह से अंग्रेजी भाषा का अध्ययन किया और उन्नति करके पृष्ठ संख्या 198 कुछ ही दिनों में डिप्टी कलेक्ट्री तक पहुंच गए। उनके अनुभव और ज्ञान को देखकर हैदराबाद रियासत ने उन्हें 1700 रुपये मासिक वेतन पर 1877 ईस्वी में अपने यहाँ बुला लिया। 1883 ईस्वी में पेंशन लेकर दिल्ली चले आए और आयु का शेष भाग लिखने पढ़ने में बिता दिया। एडिनबरा विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय ने उनको LLD और DOL की उपाधियाँ प्रदान की। डॉक्टर नज़ीर अहमद बहुत बड़े लेखक और प्रभावशाली वक्ता थे। उनकी आवाज़ ऊंची और भारी थी और जब बड़ी से बड़ी सभा में वह भाषण देते थे तो सन्नाटा छा जाता था। वह हास्य प्रिय थे। अपने चुटकुलों और किस्सों से मजमे को अपने वश में कर लेते थे। उनके भाषणों के 2 संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। उनको पढ़कर उनके ज्ञान का अनुभव लगाया जा सकता है। वह सर सैयद से बहुत सी बातों में सहमत थे और उनकी शिक्षा की योजना के लिए एक प्रचारक का भी काम करते थे, परंतु उनके धार्मिक विचारों के विरोधी थे। सरकारी नौकर होने के कारण सदैव अंग्रेजी राज के गुणगाते और अंग्रेजों की सूझबूझ, राजनीति, उदारता की प्रशंसा करते रहते थे। उन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी और कई कानूनी ग्रंथों का अनुवाद भी किया है, जिनमें इंडियन पेनल कोड और एडवेंस एक्ट के अनुवाद उनकी अनुवाद शक्ति का चमत्कार कहे जा सकते हैं। नज़ीर अहमद ने कुरान शरीफ का अनुवाद भी उर्दू में किया, परंतु जिन पुस्तकों ने उनको अमर बनाया है वह कुछ उपन्यास हैं जिनमें विपदा में फंसे हुए मुसलमान मध्यम वर्ग के सुधार पर उन्होंने अपने विचार प्रकट किए। उनका सबसे पहला उपन्यास मिरातुल उरूस है, जो 1869 ईस्वी में लिखा गया। इसी कारण वह उर्दू के पहले उपन्यासकार कहे जाते हैं। यह पुस्तक लिखते समय उन्हें इसके प्रकाशित कराने का विचार नहीं था, बल्कि अपनी बेटी की शिक्षा के लिए निजी रूप में पाठ्य पुस्तक तैयार की गई थी, परंतु संयोगवश यह पुस्तक एक अंग्रेज कलेक्टर के हाथ लग गई। उसने उसे प्रकाशित करने पर जोर दिया और उन्हें एक पुरस्कार भी दिलाया। फिर यह सिलसिला चल निकला और उन्होंने 7 उपन्यास लिखे, जिनमें से कई पर उनको सबसे अच्छी पुस्तक लिखने के पुरस्कार मिले। मिरातुल उरूस और बेनातुन नाश दोनों में लड़कियों को सुघड़ बनाने, शिक्षा प्राप्त करने और ससुराल में जीवन बिताने के सिद्धांत बताए गए हैं। यह सारी बातें ऐसी रोचक और प्रभावपूर्ण कहानियों के रूप में लिखी गई हैं कि बच्चे उनको पढ़कर मुग्ध हो जाते हैं। उपन्यास की दृष्टि से इनमें और नज़ीर अहमद के दूसरे उपन्यासों में यह कमी पाई जाती है कि वह बीच बीच में धर्म और नीति पर भाषण देने लगते हैं और उनके उपन्यासों के पात्र आदर्शवादी प्रतीत होने लगते हैं। उनका तीसरा उपन्यास तौबतुन नुसूह 1877 ईस्वी सबसे अधिक प्रसिद्ध और दिलचस्प है। इसमें दिल्ली के मिटते हुए मुसलमान घरानों का चित्र सामने आ जाता है और नज़ीर अहमद उसी में यह विचार भी प्रकट करते हैं कि सच्ची धार्मिकता के बिना जीवन सफल नहीं हो सकता। पृष्ठ संख्या 199। उनके दूसरे उपन्यासों में इब्नुल लवक्त बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बेसोच समझे भारतीयों का अंग्रेजी रहन सहन और आहार व्यवहार ग्रहण करने की निंदा की गई है। नज़ीर अहमद कवि भी थे और उनकी कविताओं का एक संग्रह भी प्रकाशित हो चुका है, परंतु उर्दू काव्य के इतिहास में उनका कोई स्थान नहीं है। कई आलोचकों ने उनके संबंध में यह कहा है कि वह जितने बड़े विद्वान थे उसके अनुकूल उन्होंने कोई रचना नहीं छोड़ी और उपन्यास लिखना उनकी महानता के विरुद्ध था। परंतु ये आलोचक इस बात को भूल जाते हैं कि उस समय जो सामाजिक समस्याएं मुसलमानों के मध्यम वर्ग को व्याकुल कर रही थीं और जिसके सुधार की योजनाएं सर सैयद शिक्षा के क्षेत्र में बना रहे थे, जिसे हाल ही और आज़ाद उच्च कोटि की साहित्यिक रचनाएं करके पूरा कर रहे थे, उसी प्रकार नज़ीर अहमद अपने उपन्यासों से लोगों को नया मार्ग दिखाना चाहते थे। उनके प्रत्येक उपन्यास के असंख्य संस्करण निकल चुके हैं और बहुत सी भाषाओं में अनुवाद भी हो चुके हैं। इससे उनके सुधारवादी आदर्शों की सफलता का पता चलता है। नज़ीर अहमद की गद्य शैली अपनी विशेषताएं रखती है। उन्हें दिल्ली की बोलचाल, मुहावरे और बातचीत करने के ढंग पर पूरा अधिकार था, इसलिए वह बड़ी प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग कर सकते थे। अरबी के विद्वान होने के कारण कभी-कभी अनुचित अरबी भाषा भी उसमें ठूंस देते हैं और ऐसे मुहावरे लिख जाते थे जो उस जगह उपयुक्त नहीं लगते। फिर भी साधारणता उनकी शैली बड़ी रोचक है। हास्य रस में डूबी होने के कारण उनकी बातें बहुत जल्द अपनी ओर खींच लेती हैं। वह अपने व्याख्यानों में अंग्रेजी शब्दों को अनुचित रूप से प्रस्तुत कर जाते थे। वह उर्दू के पहले लेखक हैं जिसने नारी संप्रदाय की बड़ी बड़ी समस्याओं पर केवल विचार ही प्रकट नहीं किए बल्कि उनके साथ सहानुभूति भी दिखाई। उन्होंने धर्म के सिद्धांतों को भी वैज्ञानिक ढंग से लिखने की चेष्टा की और कठिन से कठिन समस्या को सरल और सुरुचि रूप में प्रस्तुत किया। सब बातों को ध्यान में रखकर यह कहा जा सकता है कि वह उर्दू के केवल पहले उपन्यासकार नहीं बल्कि उन लेखकों में से हैं जिन्होंने नए युग के साहित्य की नींव दृढ़ की और भविष्य के लिए पथ प्रदर्शक बन गए। उर्दू के प्रसिद्ध लेखक मौलाना शिबली नोमानी 1857 से 1914, जो उपरोक्त बड़े लेखकों में सबसे छोटे थे, आजमगढ़ में पैदा हुए थे। उन्होंने अरबी, फारसी, धर्मशास्त्र और दर्शन शास्त्र इत्यादि की शिक्षा बड़े बड़े विद्वानों से प्राप्त की थी। उनके पिता वकील थे और इनको भी वकील बनाना चाहते थे, इसलिए शिबली भी वकालत की परीक्षा पास करके कुछ दिन वकालत करते रहे, परंतु उसमें उनका मन न लगा। पिता ने दूसरा विवाह कर लिया, इसलिए पारिवारिक जीवन में भी शांति न थी। अतयो 1882 ईस्वी में शिबली अलीगढ़ कॉलेज में फारसी के प्राध्यापक होकर चले गए। यह जीवन उनके लिए रचनात्मक सिद्ध हुआ। वहाँ उनको सर सैयद, मौलाना हाली, मुहसिनुल मुल्क और प्रोफेसर आर्नाल्ड से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। पृष्ठ संख्या 200 और उनके ज्ञान की सीमाएं विस्तृत हुई। यहीं उन्होंने भारत के नवनिर्माण और नई चेतना का अनुभव भी किया। सर सैयद के बहुमूल्य पुस्तकालय से लाभ उठाने का अवसर मिला और उन्हीं के अनुरोध पर मुसलमान महापुरुषों के जीवन चरित्र लिखने का उत्साह भी प्राप्त हुआ। उस समय तक शिबली अधिकतर कविताएं लिखते थे, परंतु जब उन्होंने गद्य लिखना आरंभ किया तो थोड़े ही समय में वह बहुत बड़े लेखकों में गिने जाने लगे। आर्नाल्ड के साथ वह मिस्र, शाम और दूसरे इस्लामी देशों में भी गए और वहाँ से अपनी नई पुस्तकों के लिए बहुत सी सामग्री लाए। मौलाना शिबली नए और पुराने का एक विचित्र सम्मिश्रण थे। सर सैयद से उनका संबंध उनके जीवन तक तो एक सहकारी एवं प्रशंसक का रहा, परंतु उनकी मृत्यु के बाद शिबली उनके विचारों का विरोध करने लगे। 1898 में अलीगढ़ कॉलेज से त्यागपत्र देकर आजमगढ़ चले आए और वहाँ एक नेशनल स्कूल स्थापित किया। कुछ दिन बीतने के बाद हैदराबाद के कला और साहित्य के निर्माण विभाग में उनको एक अच्छी जगह मिल गई और वहाँ रहकर शिबली ने कई पुस्तकें लिखीं। उसी समय कुछ मुसलमान धार्मिक नेताओं ने एक अरबी पाठशाला नदवतुल उलमा के नाम से लखनऊ में स्थापित किया था। शिबली उसमें बड़ी दिलचस्पी लेते थे, परंतु उनमें जो एक नवीनता की लहर थी उसके कारण कट्टरपंथी नेता सदैव उनका विरोध करते रहते थे। यहाँ तक कि कुछ समय बाद मौलाना शिबली को उससे भी अलग हो जाना पड़ा। 1907 में एक बड़ी दुर्घटना से उनको दोचार होना पड़ा। वह आजमगढ़ में थे और बैठे लिख रहे थे कि उन्हीं के परिवार की किसी महिला ने बंदूक अलग रखने के लिए उठाई, वह छूट गई और मौलाना का एक पांव बिल्कुल बेकार हो गया। परंतु उसने उनको बेकार नहीं किया और वह लिखने पढ़ने के काम में मरते दम तक लगे रहे। आजमगढ़ ही में उन्होंने एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक संस्था दारुल मुसन्निफीन नाम से स्थापित की, जो अभी तक अपना काम कर रही है। शिबली ने केवल 57 वर्ष की आयु पाई, लेकिन उनकी रचनाओं की संख्या बहुत है। वह एक धार्मिक नेता ही नहीं थे, वरन भारत की राजनीति से भी गहरा संबंध रखते थे। मुस्लिम लीग का विरोध करते थे और कांग्रेस को स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाली संस्था मानते थे। वह बड़े निर्भीक और प्रतिभाशाली पुरुष थे और अपने विचार बड़ी दृढ़ता से प्रकट करते थे। जैसा कि कहा गया है, मौलाना शिबली की रचनाओं की संख्या बहुत है। उनमें दर्शन शास्त्र, साहित्य, इतिहास, निबंध, जीवन चरित्र, पत्र इत्यादि सभी विषय पाए जाते हैं। परंतु जिन रचनाओं से उनका नाम जीवित है, वह है अलमामून, अलफारूक, सीरतुन्नबी, इल्मुल कलाम, शेरुल अजम, मुआजिनिये, अनीसो दबीर। शिबली के ऐतिहासिक दृष्टिकोण और धार्मिक विचारों से स्वयं उनके सहधर्मियों ने विरोध प्रकट किए हैं, परंतु साहित्यिक रचना की दृष्टि से उनका बड़ा महत्व है। इसी प्रकार उनके साहित्यिक विवेचन में भी गलतियां मिलती हैं, फिर भी उनके साहित्यिक महत्व से विमुख नहीं हुआ जा सकता। शिबली की पृष्ठ संख्या 201 आलोचना वैज्ञानिक तो नहीं होती, परंतु कविता और साहित्य से आनंद प्राप्त करने के लिए बहुत से मार्ग दिखाती है। उन्होंने दार्शनिक विषयों पर जो कुछ लिखा है, उसमें भी त्रुटियां हैं, पर उनका महत्व यह है कि इससे पहले किसी ने भी पश्चिम और पूरब के विद्वानों के विचार इस प्रकार एकत्र नहीं किए थे, और ना उनको मुसलमान दर्शन शास्त्र और दृष्टिकोण से देखा था। मौलाना शिबली की भाषा बड़ी सरस, प्रभावपूर्ण और रंगीन होती है। वह उर्दू के बहुत बड़े लेखकों में गिने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ज्ञान के हर क्षेत्र में अपना चिन्ह छोड़ा है। उनके निबंधों और पत्रों में संग्रह भी गहरे अध्ययन की चीज़ हैं। उनसे शिबली के जीवन तथा कृतित्व के संबंध में बहुत सी बातें मालूम होती हैं। उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने और उनका प्रचार करने की परंपरा चलाई थी, जो इस समय तक जीवित है। इसलिए अब भी उनका नाम बड़े आदर से लिया जाता है।